हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। शिवांशा के साथ रिश्ते की नई शुरुआत करने से पहले वेद एक बार मिहिका से मिलना चाहता था। मिहिका ने अपनी तरफ से उसे शिवांशा के साथ आगे बढ़ने के लिए ही कहा था। शाम को जब वेद घर लौटा तो उसने देखा कि शिवांशा की आंखें सूजी हुई थी और उसका चेहरा साफ बता रहा था कि वो पूरे दिन से रो रही थी। वेद के पूछने पर भी शिवांशा ने कुछ नहीं बताया। ऐसे में उसके जाने के बाद शिवांशा के साथ क्या हुआ था ये पता लगाने के लिए वेद कमरे से बाहर जा रहा था। शिवांशा जल्दी से उठी और तेज आवाज में बोली, प्लीज रुक जाइए वेद। शिवांशा के रोकने पर वेद के कदम वहीं पर रुक गए थे। उसने शिवांशा की तरफ पलट कर देखा और सख्त आवाज में कहा, ठीक है, फिर तुम बता दो कि मेरे जाने के बाद ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से तुम इतना हर्ट हुई हो। शिवांशा ने अपनी नजरें नीचे कर ली थी। वेद ने गहरी सांस लेकर छोड़ी। शिवांशा से कुछ भी उगलवाना उसके लिए कभी आसान नहीं रहा था। तो तुम कुछ नहीं बताने वाली हो? ठीक है, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं कमरे से एक कदम भी बाहर मत निकलना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, वेद ने सर्द लहजे में कहा। वेद के इतने गुस्से में बात करने के बाद शिवांशा की वैसे भी उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं होने वाली थी। उसे वहीं पर छोड़कर वेद स्टडी रूम में गया। वहां उसने दिन भर की फुटेज देखनी शुरू कर दी थी। सुबह जब शिवांशा उठी थी तब वो सबसे पहले किचन में गई थी। वहां उसने कुछ मिनट्स शीना और चांदनी से बात की और वापस ऊपर जा रही थी। वेद ने देखा कि शिवांशा कुछ देर के लिए किचन के बाहर सीढ़ियों के पास खड़ी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। इतने में रानी भी वहां पर आ गई थी। रानी के आने के बाद शिवांशा वापस अपने कमरे में चली गई थी। तो इसी बीच शिवांशा के साथ कुछ हुआ है, वेद ने लैपटॉप बंद करके कहा। वेद शिवांशा के पास जाने के बजाय सीधा नीचे गया। नीचे आते ही वेद तेज आवाज में रानी को बुलाने लगा, रानी रानी कहाँ हो तुम? वेद की गुस्से भरी आवाज सुनकर रानी जल्दी से दौड़कर वेद के पास आई। वो बोली, वेद भैया आप आज ऑफिस से जल्दी कैसे आ गए? भाभी की तबीयत तो ठीक है ना? प्लीज मुझे मत डांटना, मैं उनके पास खाना लेकर गई थी लेकिन उन्होंने कुछ नहीं खाया। रानी की नजरें नीची हो गई थी। शिवांशा ने उस वक्त उसे कुछ बताया नहीं था लेकिन वो समझ गई थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर थी। वहीं वेद जिस तरह से रानी को तेज आवाज में चिल्लाकर बुला रहा था इससे आसपास के हाउस हेल्पर तक उसकी आवाज पहुंच गई थी। किचन के अंदर शीना और चांदनी थी। उनके चेहरे पर हल्के घबराहट के भाव थे। चांदनी ने घबराई आवाज में कहा, कहीं उसने तो हमारे खिलाफ वेद भैया को नहीं भड़का दिया ना? सुबह हमने उसे किचन में ज्यादा देर रुकने नहीं दिया था, उसने हमारी बात तो नहीं सुन ली होगी ना? तुम बेवजह घबरा रही हो, उस लड़की को बस ये जताना होता है कि वेद भैया उसके पति हैं और वो उनसे कुछ भी करवा सकती है। जानबूझकर पूरे दिन खाना नहीं खाया और अब बेचारी रानी पर भैया चिल्ला रहे हैं, शीना ने आंखें घुमाकर जवाब दिया। चांदनी ने उसकी बात पर हामी भरी। वे दोनों जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए अपने काम में लग गई थी। वहीं वेद बाहर रानी के साथ खड़ा हुआ था। मेरे जाने के बाद क्या हुआ था? क्या किसी ने शिवांशा को कुछ कहा? वेद ने रानी को घूरते हुए पूछा। मुझे नहीं पता है भैया इस बारे में, मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, रानी ने हड़बड़ाकर जवाब दिया। वेद के गुस्से से उन सबको वैसे भी काफी डर लगता था। जिस दिन से वेद ने रानी को शिवांशा को खाना न देने को लेकर डांटा था उसके बाद से रानी अपनी तरफ से सारी ड्यूटी निभाने की कोशिश करती थी और गलती से भी उसे कुछ नहीं कहती थी। तुमने कुछ नहीं कहा तो क्या उसने पूरे दिन ऐसे ही खाना नहीं खाया? देखो मुझसे झूठ मत बोलो, मैंने सीसीटीवी फुटेज में देखा था, शिवांशा किचन के बाहर खड़ी होकर हो रही थी और तुम उस वक्त वहां आई थी। तुमने नहीं कहा तो किसी और ने बोला होगा। जो भी हुआ है मुझे सच सच बताओ, वरना मैं इस घर में काम करने वाले हर एक शख्स को यहाँ लाइन में लगाकर सब कुछ पूछने वाला हूँ, वेद तेज और सख्त आवाज में बोला। घबराहट के मारे रानी की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने अपनी नजरें नीचे की और सुबकते हुए कहा, मैंने ज्यादा कुछ नहीं सुना, लेकिन किचन में शीना और चांदनी बात कर रही थी। बोलते हुए रानी रुक गई थी। उसकी हिम्मत तक नहीं हो रही थी कि शीना और चांदनी की बात वेद के सामने कह सके। इस बीच वंश और आराध्या घर के अंदर दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि वेद गुस्से में खड़ा रानी को डांट रहा था। वंश ने सिर हिलाया और आराध्या से बोला, इसने फिर से भाई को गुस्सा दिला दिया, क्या तुम इसे चेंज नहीं कर सकती? पहले जाकर पता तो करने दो आखिर हुआ क्या है। रानी ज्यादा बोलती है पर अपना काम अच्छे से करती है और साफ दिल की भी है, आराध्या ने जवाब दिया। वंश और आराध्या पूरा मामला जानने के लिए वेद के पास पहुंचे। वहीं वेद रानी के चुप हो जाने पर जोर से चिल्लाकर बोला, मैंने पूछा क्या कहा था उन दोनों ने जिसकी वजह से शिवांशा पूरे दिन से रो रही है। वेद की बात सुनते ही उन दोनों को झटका सा लगा। वहीं रानी डर के मारे उछलकर कुछ कदम दूर हो गई थी। उन्होंने कहा कि शिवांशा भाभी आपके लायक नहीं है, रानी ने जल्दी से अटकते हुए अपनी बात पूरी की। वहीं उसका जवाब सुनते ही वेद ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां घींच ली थी। आराध्या ने गहरी सांस ली और वेद की तरफ बढ़ते हुए बोली, भाई मैं सब कुछ हैंडल कर लेती हूँ। आखिर कब तक आराध्या? यहाँ काम करने वाले लोग काम करने के बजाय मेरी पर्सनल लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, और तुम कब कब और किस किस को हैंडल करोगी? तो अब ये लोग डिसाइड करेंगे कि कौन मेरे लायक है या कौन नहीं, वेद ने सख्त आवाज में जवाब दिया। अब वो शिवांशा के दिल की तकलीफ और उसके दर्द को अच्छे से समझ सकता था।
अगर उसकी जगह वो भी होता तो उसे भी उतना ही बुरा लगता। मैंने उन्हें चुप करवा दिया था भैया, और मुझे नहीं पता था कि भाभी कब से उनकी बातें सुन रही थी। जब भी कोई उनके बारे में बात करता है मैं उन्हें चुप करवा देती हूँ, पर भाभी जिस तरह से रहती हैं सबको यही लगता है कि वो इस खानदान की बहू बनने के लायक नहीं है। रानी ने जैसे तैसे डरते हुए अपनी बात खत्म की। ये पहली बार नहीं था जब उसने हाउस हेल्पर को इस तरह शिवांशा के बारे में बात करते हुए सुना था। हाँ, रानी उन्हें अपनी तरफ से चुप करवाने की पूरी कोशिश करती थी, पर वेद के सामने सजाना भी जरूरी था। वेद ने जवाब में कहा, वो जैसे भी रहती है मुझे पसंद है। और मैं, बोलते हुए वेद एक पल के लिए रुका और अपनी आवाज और शब्दों को गंभीर करके बोला, मैं उससे प्यार करता हूँ। मुझे अच्छी लगती है वो, जब हर सेकंड अपनी साड़ी संभालती रहती है। तुम लोगों के लिए उसके बाल मेसी हो सकते हैं, लेकिन मुझे उसकी चोटी में से आगे की तरफ निकले बाल बहुत पसंद हैं, जिन्हें बार बार वो कान के पीछे करती रहती है। वेद को खुद एहसास नहीं था कि वो अपने गुस्से में अपने जज्बातों को सबके सामने रख रहा था। हालांकि वेद ज्यादा कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन उसकी बात सुनकर आराध्या और वंश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। मैं एक दो दिन में स्टाफ चेंज करवा दूंगी, आराध्या ने बात को संभालने की कोशिश की। उन्हें यहाँ बुलाओ, जिसने सुबह ये कहा था कि वो मेरे लायक नहीं है, वेद ने बिना किसी भाव के कहा। आराध्या जल्दी से किचन में गई। उसने चांदनी और शीना की तरफ घूर कर देखा और सख्त आवाज में कहा, मेरे पीछे बाहर आओ। आराध्या उनका जवाब सुने बिना ही बाहर जाने लगी। वहीं चांदनी और शीना को भी समझ आ गया था कि बाहर जो भी तमाशा चल रहा है वो उन दोनों से जुड़ा हुआ था। शीना जहां थोड़ी देर पहले चांदनी को समझा रही थी, वहीं अब उसके चेहरे पर भी घबराहट के भाव थे।
मुझे डर लग रहा है, चांदनी ने शीना का हाथ पकड़कर कहा। मुझे नहीं पता था कि वो बाहर खड़ी होकर हमारी बातें सुन रही है और इस तरह वेद भैया के आने पर उन्हें अच्छा खासा भड़का देगी। जो भी हो, हमें यही कहना है कि हमने उसे कुछ भी गलत नहीं कहा था, शीना ने चांदनी को समझाया, और फिर दोनों बाहर आ गईं। वेद उन दोनों को खा जाने वाली निगाहों से देख रहा था। वेद ने उन्हें देखते ही सख्त आवाज में कहा, मुझे झूठ नहीं सुनना है। सुबह तुम दोनों ने शिवांशा के बारे में उसके पीछे से जो भी कहा, एक एक शब्द वैसे ही रिपीट करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अंदर अपनी तरफ से शीना खुद को कितना भी मजबूत करके आई हो, लेकिन वेद को देखते ही उसकी सारी बहादुरी हवा में उड़ गई थी। शीना की नजरें नीची हो गई थीं, तो चांदनी कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। वेद जोर से चिल्लाया, आई सेड रिपीट योर वर्ड्स। वो बस सुबह किचन में हमारी हेल्प करना चाहती थी, हम बस उनसे कोई काम नहीं करवाना चाहते थे, इसीलिए मैंने उनसे झूठ बोला कि आराध्या भाभी ने मुझे पहले ही मेन्यू बता दिया है, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ था, शीना ने धीमी आवाज में कहा। वेद ने एक पल के लिए अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया था। रात को उसी ने शिवांशा से घर की कुछ जिम्मेदारियां सीखने की बात कही थी। वेद ने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, तुमने मेरे लिए एफर्ट्स करने की कोशिश की, लेकिन इन लोगों ने तुम्हें हर्ट कर दिया। आई एम रियली सॉरी शिवांशा, मेरी वजह से तुम्हें इन सब लोगों की बात सुननी पड़ी और इतना बुरा लगा। वेद बिल्कुल शांत था, लेकिन वेद जिस तरह गुस्से में चिल्ला रहा था और शिवांशा पूरे दिन रो रही थी, तो बात इतनी भी छोटी नहीं हो सकती थी। आराध्या ने शीना से कड़क लहजे में कहा, और तुम्हें यह डिसाइड करने का हक किसने दिया कि शिवांशा भाभी को कौन सा काम करना चाहिए या कौन सा नहीं? वो इस घर की बहू है, जहां चाहें जा सकती हैं, उन्हें इजाजत की जरूरत नहीं है। अगर उन्हें किचन में कुछ करना था तो तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई उन्हें झूठ बोलकर बाहर भेजने की? हम डर गए थे, चांदनी बोली। पिछली बार उनके हाथ का बना खाना खाने के बाद वेद भैया की तबीयत खराब हो गई थी, तो हमें लगा कि वो इस बार भी खाने में कुछ मिला ना दे। ठीक है, मैं तुम लोगों का कंसर्न समझ सकता हूँ, लेकिन क्या सच में यही सब हुआ था? उसके जाने के बाद पीछे से तुम दोनों ने क्या बात की थी? एक और मौका दे रहा हूं सच बताने का, अगर इस बार भी झूठ बोला तो जिंदगी भर किसी लायक नहीं छोड़ूंगा, वेद ने उन दोनों की तरफ देखकर कहा। हालांकि रानी ने कुछ बातें उसे पहले ही बता दी थी, पर फिर भी वेद उन्हें एक मौका दे रहा था। शीना और चांदनी ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्होंने जो भी बात की थी उसके बारे में वेद को बताना उनकी मुश्किलों को बढ़ा सकता था। बस इतना ही हुआ था, चांदनी ने कहा। तो तुम सच नहीं बोलोगी? वेद ने तंज भरी मुस्कुराहट के साथ कहा। ठीक है, फिर अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन किस चीज़ के लायक है। लायक तो तुम दोनों भी यहाँ काम करने के नहीं हो, और जिस लड़की की तुम ये कहकर बुराई कर रही थी कि वो मेरे लायक नहीं है, वो इस घर की बहू है, मेरी पत्नी, चौहान एम्पायर्स और इस घर की मालकिन। वेद की बात सुनकर उन दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया था। शीना जल्दी से बात संभालते हुए बोली, गलती हो गई भैया, वो आपकी शादी मिस बंसल के साथ होने वाली थी, वो बिल्कुल परफेक्ट है, हमने बस ये कहा था कि मिस बंसल और शिवांशा भाभी में कोई कंपैरिजन ही नहीं है, एक ना एक दिन आप उन्हें छोड़कर मिस बंसल से ही शादी करोगे। अनजाने में शीना के मुंह से सब कुछ निकल गया था। आराध्या ने अपना सिर पकड़ लिया था। वहीं वेद का मन कर रहा था कि वो शीना की जान ले ले। अब उसे शिवांशा की ये कहने की वजह समझ आ गई थी कि वो उसके लायक नहीं है। शिवांशा अभी महका के बारे में नहीं जानती थी, और उसे पता भी चला तो इस तरह से। वेद ने अपनी मुठ्ठियां भींची और दांत पीसते हुए कहा, आराध्या प्लीज इन्हें मेरी नजरों के सामने से दूर ले जाओ, और आज के बाद ऐसे लोग यहाँ नजर नहीं आने चाहिए। यहाँ काम करने वाले और रहने वाले लोग अच्छे से समझ ले तो बेहतर होगा कि वो मेरी पत्नी है, वो जैसे भी रहे सबको उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी। अगर कोई ये नहीं कर सकता तो इस घर से जा सकता है। अपनी बात खत्म करके वेद जल्दी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा रहा था। उसे आखिर शिवांशा से भी बात करनी थी और उसे संभालना था।
वेद के ऊपर जाते ही वंश ने उन दोनों की तरफ देखकर कहा, आई विल मेक श्योर कि तुम्हें जिंदगी में कभी कहीं काम ना मिले, ताकि तुम्हें कम से कम ये तो समझ आ जाएगा कि कब और कितना मुंह खोलना है। नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिए, शीना ने गिड़गिड़ाकर कहा। वंश ने उसे देखकर सिर हिलाया और वहां से चला गया। उन्होंने उम्मीद भरी निगाहों से आराध्या की तरफ देखा, लेकिन वो भी गुस्से में नजर आ रही थी। आखिर वे लोग शिवांशा को खुद की ही नजरों में नीचा देखने पर कैसे मजबूर कर सकती थी। ओके, फिलहाल के लिए इतना ही, सॉरी फॉर द गैप। एक तो ये 2026 इतना अनलकी साबित हुआ है कि शुरू हुए अभी ठीक से महीना भी नहीं बीता और दो रिलेटिव की डेथ हो गई। आई होप कि आगे का साल अच्छा जाए, ऐसे में फिर काम करने का मन भी नहीं करता है। चलिए आप पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा, अगले पार्ट पर मिलते हैं। देखते हैं कि वेद कैसे शिवांशा को संभालता है। आखिर उसने माना तो सही कि मैं शिवांशा से प्यार करता हूँ।